सिद्ध आए, विद्याधर नाग वगैरह सब आए, एक एक श्लोक बोल बोल करके भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके सब चले गए। भगवान के तो अभी भ्रिकुटी ऐसी ऐसी तनी हुई है, अभी भगवान के इन स्तुतियों से कोई असर नहीं हुआ, चुपचाप सुनते रहे, सबकी देखते रहे। देवताओं ने धीरे से लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जैसे तैसे आप जाकर के मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो भाई आपके सामने तो शायद मुझे नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग तो फिर अपने अपने घर चले जाओगे, फिर वहां पर मुझे पकड़ करके डांटेंगे, इसलिए बाबा मैं तो अपने घर में कलह नहीं लेती, बाबा मैं तो यहीं से हाथ जोड़ देती हूँ, आप जानो और वो जानो, मैं बीच में नहीं पड़ती। तो फिर सब देवता गए ब्रह्मा प्रहलाद जी के पास कि प्रहलाद जी जरा तुम ही जाकर के उनको शांत करो, उनके चरणों में चले जाओ और उनके क्रोध को दूर करो, अन्यथा सारे के सारे त्रिलोकी कांप रही है, हड़कंप मचा हुआ है कि प्रलय न हो जाए। तब प्रहलाद जी गए, प्रहलादम प्रेषयामास है तथे सनकई राजन, और हे परीक्षित, वो छोटे से प्रहलाद छोटे छोटे चरणों से भगवान के सामने हाथ जोड़े जोड़े गए, और जो ही भगवान के पास में गए, भगवान के पास में जाकर उपेत्य भूमि काये ननाम विद्रतांजलि, उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके जो ही खड़े हुए, भगवान उछल करके अपनी गोद में बैठाए और बहुत प्यार किया, उसको छाती से लगाए और उसके सिर को पपोला, उसके कपोलों को पपोला, छाती को पपोला और पपोल करके बड़ा उसका प्यार किया। उस समय में फिर प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की है। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज जितने ब्रह्मा है देवता है, ये चाहे कितने ही आपकी स्तुति कर ले, में आपकी स्तुति का अंत नहीं होता है। महाराज आपकी स्तुति किन शब्दों में की जाए, वो शब्द बहुत पीछे रह जाते हैं, आप तो बड़े महान हैं। कोई ब्राह्मण है और धन का, कुल का, रूप का, तपस्या का, शास्त्र का और तेज का, प्रभाव का, इनका सबका अपने में अभिमान रखता हो, तो अभी महाराज आप इनकी आराधना से प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और कोई ब्राह्मण में ये 12 चीजें तो हैं, लेकिन वो आपसे विमुख है तो ये 12 चीजें इसके किसी काम की नहीं है। विप्रा द्विषड गुण युता अरविंद नाव पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये। मैं महाराज ऐसा चांडाल अच्छा है कि जो 12 गुण तो नहीं है, लेकिन आपके सन्मुख हुआ हुआ है, मैं ब्राह्मण की अपेक्षा उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। कौन ब्राह्मण? कि जिसमें जो आपसे विमुख हुआ हुआ है और उसमें बहुत सी विशेषता है, भले ही होती रहो। महाराज लोग आपकी स्तुति करते हैं और सोचते हैं कि हमने भगवान की स्तुति कर ली। महाराज आप तो स्तुतियों से कोई राजी होने वाले थोड़े ही है, निज लाभ पूर्ण है, आप तो अपने ही स्वरूप से परिपूर्ण है। स्तुति करने वाला अपना ही स्वरूप निखारता है, जैसे कोई अपने काजल लगावे आंखों में और कांच में देखे तो वो कांच को सुंदर नहीं बनाता है, उसकी आंखें ही सुंदर होती हैं। इसी प्रकार से आपकी स्तुति से आपकी महिमा नहीं होती, जीव की अपनी महिमा होती है। इसलिए महाराज आपकी स्तुति आपके काम नहीं आती, हमारे काम आती है। महाराज आप मुझे डराइए मत, आपके इन आंखों को और आपके इन दांतों को और आपके इन नाखूनों को और आपके तेजस्वी रूप को देख करके मैं डर नहीं रहा हूं। क्यों डरूं? ज्यादा से ज्यादा कर्मों के फल से आप मुझे मेरे पिता के समान मार देंगे, और क्या करेंगे आप? मैं उससे नहीं डरता हूं, मैं महाराज डर इस बात से रहा हूं कि संसार में ये भोग विषय जो मेरा स्वरूप ही नहीं है, लेकिन मेरा मन इनमें आकृष्ट हो जाता है, इस बात की जो विपत्ति है, ये मेरे लिए बड़ा भारी भय का कारण है। बद्धे स्वकर्म भी रुषत तमत इंग्री मूलम। महाराज आपके तो चरणों में गिरते ही आप माफ कर देंगे, लेकिन भोगों से हमको कौन छुड़ाएगा आपके अलावा? महाराज देखिए जितने भी संसार में आश्रय दिखता है, चाहे माँ बाप का आश्रय हो, चाहे और किसी बात का आश्रय हो, जल के अंदर नौका का आश्रय हो, बीमारी में दवाई का आश्रय हो, ये सब मिलता आप ही से है, इसके मूल केंद्र आप ही है, आप ही से मिलता है। महाराज ये मेरा मन माया के अंदर ऐसा उलझ गया और इस मन के अंदर मैं ऐसा उलझ गया हूँ, आपके संसार चक्र से छूटना मेरा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पिता के साथ बहुत लोकों में घूम फिर के आया हूँ, कहीं पर भी मजा महाराज आपके बिना शांति कहीं पर भी नहीं है। वे देवता भी बिचारे डरते हैं कि कहीं स्वर्ग हमसे छीन न लिया जाए, ब्रह्मा जी भी डरते हैं कि कहीं हमारा ब्रह्मलोक छीन न लिया जाए। महाराज इन लोकों में जाकर मैं क्या करूंगा? आप तो महाराज अपने हाथ में तलवार लिए हुए हैं ही, हमारी जो अविद्या की गांठ है उसको आप काट डालिए, उसका छेदन कर दीजिए, हम निहाल हो जाएंगे। आगे पीछे संसार में आप ही तो हैं। यर्यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च, मरा जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, वही तो बीच में होता है। जो बीज है वही वृक्ष बनता है, वृक्ष होकर के वापिस वही बीज होता है। लेकिन बीज में और वृक्ष में एक पृथ्वी दोनों में रह रही है, इस बात को समझना चाहिए। ऐसे ही संसार की प्रतीति हो रही है, संसार की उत्पत्ति होती है, प्रतीति है और इसका अभाव है। ये सब आपके प्रकाश से ही हो रहा है। आपने नाभि कमल से ब्रह्मा को बनाया, नाभि कमल से ब्रह्मा को बनाकर सारे संसार को बनाया। आप ही हयग्रीव बने, मधु कैटम नाम के दैत्यों का संहार आपने किया। मनुष्य रूप में, देवता रूप में और रूपों में, मत्स्यादि रूप में कितने कितने आपने अवतार लिए हैं। लेकिन महाराज मेरे मन को तो देखो, जब विषयों की चर्चा चलती है तो मेरा मन आकृष्ट होता है और उन विषयों की चर्चा बड़े प्रेम से सुनने की इच्छा होती है, और आपकी कथा होती है तो तरह तरह से उबासियां आती हैं, मन खिन्न होता है, सोचते हैं कब कथा पूरी हो और कब चले जाए, कब कथा पूरी हो और चले जाए। ऐसी महाराज हमारी दशा हो रही है। देखो ये लिखी हुई बात बोल रहे हो, नैतन मन स्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रियते दुरति दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय शनार्थम तस्मिन कथम तव गतिम विमृशामि दीन। मैं तो बहुत दीन हूँ। दीन वो है कि जो संसार की तरफ हाथ पसारे बैठा है, धनवान वो है जो भगवान के सामने हाथ पसारे बैठा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं भोगों की तरफ लालायित हूँ तो मैं दीन हो गया हूँ। महाराज मेरी दशा देखिए आप, आपको पता नहीं है हम लोग कैसे कैसे कष्ट पाते हैं। मेरी जिह्वा है वो तो मुझे कहती है कि मीठा मीठा खिलाओ, और मेरा मेरा कान कहता है कि मुझे अच्छे अच्छे शब्द सुनाओ, नाक कहती है कि मुझे अच्छे अच्छे सुगंधित वस्तु ला कर दो, आंख कह रही है कि मुझे अच्छा अच्छा रूप दिखाओ, मेरी त्वचा कहती है कि कोमल कोमल चीजें लाओ। अब महाराज मैं तो अकेला हूँ और इतनी इंद्रियां मेरे पीछे पड़ी, सब पकड़ पकड़ के मुझे घसीट रही है, जैसे कोई 10-12 आदमी किसी एक आदमी को घसीटे, कैसी उसकी दुर्दशा होती है, लहू लुहान हो जाता है, चारों तरफ उसके शरीर में मिट्टी लग जाती है और वो कादे कीचड़ में पड़ा रहता है। ऐसी मेरी दशा हो रही है महाराज, और कोई उपाय नहीं है, आप कृपा कर दो, मेरी सब इन व्यवस्थाओं को जान करके क्षमा करके और आप महाराज मेरा उद्धार कर दो। और हे नाथ, यही आपका सबसे बड़ा अनुग्रह है और इस अनुग्रह को मैं भूल नहीं सकता हूँ। महाराज मुझे नरकों का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि मैं कहीं संसार में फंसने जाऊं। नहीं नहीं महाराज, मेरा उद्धार मत करना महाराज, मैं अकेला मेरा उद्धार नहीं चाहता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा है कि वो अपने ही भजन में लगे हुए हैं, अपने ही कल्याण के विषय में सोचते हैं, उसी के लिए मौन धारण करते हैं विजने, और वे एकांत में रहते हैं, परंतु न परार्थ निष्ठा, वे दूसरों के उद्धार के लिए इतने प्रयत्नशील नहीं है। महाराज मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में पड़ा हुआ है तो पहले आप उसका उद्धार कीजिए, उसके बाद मेरा उद्धार कीजिए। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम तोदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्ये। महाराज मैं अकेला अपना उद्धार नहीं चाहता हूं। ये सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का विनाश, ये बराबर बीज और वृक्ष की तरह से क्रम में चल रहा है। इसमें महाराज सावधान वही है कि जो आपका पूजन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपकी स्तुति करता है, आपके चरण कमलों का स्मरण करता है, आपके शरण हो जाता है, ये महाराज संसार में महान स्वार्थी पुरुष है वो। और जो इन चीजों को नहीं करता है महाराज, वो महान मूढ़ मनुष्य है। भगवान कहने लगे, प्रह्लाद तुम्हारी स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, कोई वरदान मांग लो, मैं कुछ देने के लिए आया हूं, दूं क्या तुझे, तुझे क्या दे सकता हूं। मैंने बहुत विचार किया, प्रह्लाद को क्या दूं, मेरे लिए इतनी मार खाई, मेरे लिए इतना कष्ट भोगा, तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस नियम को आज यदि मैं मेरे पर लागू करूं तो मेरे सामने कितनी दिक्कत आ जाएगी। जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उस भक्त का उसी भाव से भजन करता हूं, तो आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया तो फिर मैं भी आपके लिए इतना कष्ट उठाऊं, तब जाके मेरी बात पूरी होगी ना। नहीं 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 भैया, तब तो हम संकट में पड़ जाएंगे, आज तुम अपने मन से कुछ मांग लो और उसका उसको पूरा कर देवे, मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। प्रह्लाद मेरे से कुछ मांग लो, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। और क्या बताऊं, दृष्टवा माम न पुनर्जंतु आत्मानम तप तुम अर्रति। और जो कोई एक बार मेरा दर्शन कर लेता है उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं। मांगो आज मैं तुमको कुछ देने के लिए आया हूं। प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आपकी इस वाणी को सुनकर के तो हमको बहुत सावधान होना चाहिए, आप मेरे मन की परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई लेने की इच्छा तो नहीं है, नहीं तो आप, अरे आपको देना था तो आप यूं ही दे दो, हमको मंगता बना के क्यों देते हो आप, आप महाराज हमको यूं ही दे दो जो आपको देना है। जो कुछ लेने की दृष्टि से जो आपका भजन करता है वो महाराज भजन नहीं, वो तो व्यापार है, आप तो देंगे और वो आपसे लेगा, और इस शर्त पर वो भजन करेगा कि ये काम करेंगे हम, ये आराधना करेंगे तो ये हमको भगवान फल देंगे, तो महाराज वो तो अच्छा सेवक नहीं है और आप कोई उत्तम दाता भी नहीं कहलाओगे। आपकी उत्तम दातागिरी इसी में ही है, हमारे लिए जो उपयुक्त है आप दे दो, और हमारे लिए सबसे बड़ा भजन यही है कि हम आपसे कुछ भी नहीं चाहे और आपसे प्रेम करें बस महाराज, हमें तो यही बात अच्छी लगती है। फिर भी आप मांग लो मांग लो मांग लो कह रहे हो तो महाराज ये मेरे मांगने की वृत्ति उठे ही नहीं, यही हम आपसे चाहते हैं। नृसिंह भगवान कहते हैं वाह प्रहलाद तुमने बड़ी सुंदर बात कही है, देखो अब मेरी एक इच्छा है, तुमने कहा ना अपने मन से ही कुछ कर दो, तो हमारी इच्छा है एक मनवंतर तक तुम यहां पर शासन करो, लोगों को अपनी मेरी भक्ति का कितना महात्म्य लोगों को बताओ। देखो मेरी भक्ति करने से जो महात्म्य प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा दूसरों को भक्त बनाने में ज्यादा लाभ होता है, इसलिए तुम यहां पर रहो और रह करके मेरी भक्ति का प्रचार करो ताकि लोग मेरी तरफ चले। कथा मदीया जुष्माणे प्रियास्त्वम, मेरी कथा बहुत प्रिय है, मेरा चरित्र बहुत प्रिय है, सुनोगे तो और सुनने की इच्छा होगी। ऐसा संसार में नहीं होगा, हो भोजन ज्यों ज्यों करेंगे त्यों त्यों भोजन से अरुचि पैदा होगी, लेकिन ज्यों ज्यों कथा सुनोगे नाम लोगे त्यों त्यों उसमें रुचि बढ़ेगी। तो मेरी कथा बहुत प्रिय है इसलिए तुम लोगों को सुनाओ लोगों को बताओ, और अपना प्रारब्ध के अनुसार जितने दिन यहां तुमको रहना है उसके अनुसार अपने पुण्यों को तो भोग करके नष्ट कर दो, और शरीर को ये काल नष्ट कर देगा, निष्काम भाव से तुम पापों को नष्ट कर दोगे, अपने सारे संसार में विशुद्ध कीर्ति फैलाओगे। प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। प्रहलाद जी महाराज महाराज ठहरी ठहरी एक बात की भूल हो गई कि क्या, आपने कहा ना कुछ मांगो मांगो, तो अब हमारे मन में आई मांगने की। देखो प्रहलाद जी ने उस समय नहीं कहा, अब क्यों कहा, प्रहलाद जी ने गौर किया कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मांगो मांगो तो मेरे अंदर जरूर कोई ना कोई मांगने की वृत्ति है, नहीं तो भगवान के मुख से ये बात निकल नहीं सकती थी। तो टटोला अपने मन को कि मैं क्या चाहता हूं क्या चाहता हूं क्या चाहता हूं, अपनी मांग उनको दिखाई कि महाराज मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं ये मांग रहा हूं कि मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की है, मेरे पिताजी ने आप पर मिथ्या दोषारोपण किया कि हिरणाक्ष को इस विष्णु ने मारा है, आपके अंदर मारने की भावना की, आपके अंदर पक्षपात की भावना की, मृषा दृष्टि की दोष दृष्टि की है, अतः महाराज मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद क्यों मांगा, ये तेरे मांगने की बात नहीं थी, ये तो मेरे करने की बात थी। जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है उसके 21 पीढ़ी को तारने का काम मेरा होता है, तुम्हारा थोड़ी होता है, ये तो काम मेरा करने का था, ये मैंने कर दिया, तुम्हारे 21 पीढ़ी तो हुई नहीं है। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी के हिरणाक्ष, हिरण कश्यप, ये चार पांच तो पीढ़ी हुई है, 21 पीढ़ी भी होती तो मैं उसको तार देता, तुम कोई चिंता मत करो। प्रहलाद तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारे पिता ने कोई पाप किया है, पाप किया होगा कभी, लेकिन मेरी गोद में आ जाने के बाद और मेरे अंग का स्पर्श करने के बाद तुम्हारे पिता का शरीर चाहे वो मुर्दे वाला भी है महान पवित्र है, और इस पवित्र शरीर का अब तुम बड़े श्रेष्ठ भाव से जाकर प्रेत कार्य करो। मदंग स्पर्शने नांग लोकान यास्यति सुख प्रजा, और मेरे अंग का स्पर्श करने से इसमें बहुत पवित्रता आ गई है, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के कल्याण के विषय में तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और मेरे परायण होकर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद अब फिर ब्रह्मा जी आए भगवान के पास, भगवान से आकर के कहा महाराज क्या करूं, मैं तो भोला भाला ठहरा, मेरा दिमाग तो ज्यादा काम करता नहीं था, इसने तपस्या की, हम लोग घबराए, हमने बिना सोचे समझे इसको वरदान दे दिया, आपने हमारी रक्षा कर दी महाराज, नहीं तो हम सब बड़े संकट में पड़ गए थे। नृसिंह भगवान कहने लगे देखो ब्रह्मा जी गलती तो तुम करते हो और सकल हमको बिगाड़नी पड़ती है, ऐसा भी कोई रूप होता है, आधा तो मनुष्य, न तो हम पशुओं में माने जाए न हम मनुष्य में माने जाए, देखो हमको सकल बिगाड़नी पड़ती है ना, अरे काम तुम बिगाड़ते हो और उसका रूप हमको बिगाड़ना पड़ता है, ऐसा कभी मत करना भाई। वर है क्रूर निसर्गाणाम अही नाम अमृतम यथा, क्रूर व्यक्तियों को ऐसा उत्तम वरदान देना तो सांप को दूध पिलाने के समान है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हुई सो हुई, आइंदे तो ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत सोच समझ करके देंगे। इस प्रकार से भगवान वहां से अदृश्य हो गए। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने मिलकर के जिस आसन को भगवान ने बैठ करके पवित्र किया था उस आसन पर प्रह्लाद को बैठाया। भगवान का भक्त होता है वो राक्षस के सिंहासन पर नहीं भगवान के सिंहासन पर बैठता है, उस सिंहासन पर उनको बैठाया, उनकी पूजा की, उनको राज्य दिलाया। और फिर प्रह्लाद जी ने सब देवताओं की ब्रह्मा जी की पूजा की, सब अपने अपने धाम में चले गए। तो देखो ये प्रह्लाद जी का चरित्र है, यही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप कुंभकर्ण और रावण बने थे, यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। क्या बतावे हे नारा, हे युधिष्ठिर तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने आज ये प्रह्लाद जी का चरित्र सुना है। जो अभी कोई प्रह्लाद जी का चरित्र सुनता है उसकी खोई हुई भक्ति उसमें आ जाती है, उसका लुप्त हुआ ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। और क्या बतावे वह इतना पवित्र हो जाता है प्रह्लाद चरित्र सुनने के बाद कि उसको फिर किसी प्रकार की अपवित्रता स्पर्श ही नहीं कर सकती है। और हे युधिष्ठिर तुम जिसे अपना ममेरा भाई मान रहे हो, ये देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने शिशुपाल को क्या पवित्र किया, इन्होंने सबका उपकार किया है, ये वही नृसिंह बने हैं ब्रह्मा जी का उपकार किए। और आपको क्या बताऊं एक बार शंकर भगवान भी संकट में पड़ गए थे, उनका भी इन्होंने उपकार किया है। कि महाराज शंकर भगवान कैसे संकट में पड़ गए कि देवताओं ने असुरों को हरा दिया, असुर लोग गए मयासुर मय दानव के पास, दानव ने कहा कि चलो तुम मेरी शरण में आ गए मैं तुम्हारे लिए उपाय करता हूं। उसने 3 विमान बना लिए, थोड़ी सी देर की बात है और भाई घबराना नहीं, बहुत जल्दी छुट्टी कर देंगे, बहुत दिन उठने लग गए आप, थोड़ी सी कथा हो रहे। तो 3 बना दिए विमान, सोने का चांदी का और लोहे का, तीनों विमानों में सब असुरों को बैठा दिया और कहा कि देखो अब आकाश में विमान घूमेंगे, तुम देवताओं को हराना चालू कर दो, देवताओं को तो विमान मिलेंगे ही नहीं, उनको दिखेंगे नहीं, तुम बाणों की वर्षा कर दो। अब बताओ कोई देवता बाण चलावे तो कहां चलावे, आकाश में चलाएंगे तो आकाश में वो दिखते ही नहीं। अब ऐसे करते करते बेचारे देवता लोग हार गए इधर। अब असुरों ने देवताओं को परास्त करना चालू किया तो देवता लोग गए भगवान शंकर की शरण में। शंकर भगवान ने कहा आओ मेरी शरण में आ गए तो मैं रक्षा करता हूं। शंकर भगवान ने क्या किया, एक बाण लिया अग्नि के समान, बड़ा वो तेजस्वी बाण था, प्रकाशमान बाण था, बाण छोड़ा तो तीनों के तीनों विमान वहां पर जल करके भस्म हो गए, परंतु उसमें जो असुर थे वो भी जल गए। और उसने मयासुर ने मय दानव ने क्या किया, सब असुरों को उठा करके और अमृत के सागर में, अमृत के कुएं में ले जाकर डाल दिया, सब जीवित हो गए। इधर मारे और उधर वो अमृत के कुएं में ले जाकर के डाल दे, वे सब जीवित हो जाए। अब कहां तक कोई मारेगा, मारे और वो जीवित हो जाए, एक आदमी का भी ऐसा हो जाए तो उसको भी मारना मुश्किल है, सेना की सेना है। अब बिचारे शंकर भगवान के पसीना पसीना हो गया, क्या करे। भगवान विष्णु समझ गए कि आज शंकर भगवान संकट में पड़ गए हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुला के कहा देखो तुम तो बन जाओ बछड़ा और मैं बनता हूं गाय, अब जाकर के अपने को अमृत पी लेना है और इन असुरों को हराना है, शंकर भगवान की रक्षा करनी है, उन्होंने वचन दे दिया। अब विष्णु भगवान तो बहुत सुंदर गाय बने और बछड़ा बन गए ब्रह्मा जी। अब ये गाय बछड़ा उछलते 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 जो वो अमृत का कुआं था वहां पर भी चले गए और सब असुर बैठे, कभी बछड़ा फुदकता है कभी गाय ढींगती है, इनका रूप देखकर लट्टू हो गए एकदम, कितनी अच्छी गाय है कितना अच्छा बछड़ा है, उसको देखते देखते ऐसे लट्टू हो गए। वो ढींगते उछलते कूदते वहां जा गए कुएं में जहां अमृत रखा हुआ था, वहां जाकर के सारा का सारा अमृत पी लिया और अमृत पी लिया, पीने के बाद बाहर आए तो मैं दानव ने कहा कि ओहो अब तो भाई खेल खत्म, पैसा हजम, सारा अमृत ये विष्णु और ब्रह्मा पी गए, अब तो भाई भगवान की मर्जी होगी वैसा होगी, अब मेरे पास जिलाने की शक्ति नहीं है। इतने में ही विष्णु भगवान ने भगवान शंकर से कहा महाराज अब आप एक अच्छा रथ तैयार करो, धर्म का तो रथ बनाओ, ज्ञान को सारथी बनाओ, वैराग्य की ध्वजा फहराओ और रिद्धि सिद्धि की आप रिद्धि सिद्धियों के घोड़े बनाओ, तपस्या का धनुष ले लो, विद्या का आप कवच पहन लो और क्रिया के द्वारा बाण बनाओ और असुरों पर आक्रमण करो, आपकी विजय होगी। शंकर भगवान ने ऐसा ही किया, असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को राज्य मिल गया, देवताओं ने धुंधवियां बजाई, सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और फिर सब के सब देवता मिलकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद भागवत। वस्तुतः शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का वो मधुर फल है जिसमें से कुछ भी चीज त्यागने योग्य नहीं है। इतना मीठा और सरस ये फल है, एक सुखदेव ने नहीं न जाने कितने संतों ने महात्माओं ने इसे लिया है और कब तक ये अमृत रस बहता रहेगा इसका कोई अंत नहीं है। भागवत में स्वयं भगवान ने अपना निवेश किया है, भागवत में भक्ति का निवास है, भागवत में ज्ञान और वैराग्य भी मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक भगवत प्राप्ति के विलक्षण साधन है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। प्रकृति में हमारे सातवें स्कंद के प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर एवं नारद का संवाद चल रहा है। परीक्षित जी ने भगवान के विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने नारद के श्रीमुख से भगवान की बड़ी अलौकिक महिमा प्रह्लाद चरित्र के साथ सुनवाई। इन सब बातों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में विचार हुआ कि जीवन में और तो बहुत सी बातें सुगमता से मिल जाती हैं, परंतु श्रीमद् भागवत का मिलना बहुत मुश्किल है। भागवत माने संत महापुरुष, संत महापुरुष स्वयं भागवत है, तो ऐसे भागवतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो नारद जी आज हमारे महल में पधारे हुए हैं तो इनसे और भी बात पूछ लेनी चाहिए। थोड़ी सी बात परीक्षित युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछी थी, कितना विस्तार के साथ भगवान की उस लीला का वर्णन किया जिससे सारे संदेह दूर हो सकते हैं। अतः अब भगवत विषयक प्रश्न न करके अन्य दूसरे प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से निवेदन करते हैं। ये सातवां स्कंद है, ये बताता है कि जीवों की जन्म जन्मांतर की वासनाएं किस प्रकार से जीव का जीवन बनाती है और उन वासनाओं के अनुरूप यह जीव चलता है। उन वासनाओं से अपने को दूर हटा भी सकता है और इन वासनाओं से उपरत होकर, इन वासनाओं से उपहित होकर ये संसार में फंस भी सकता है। पहले के पांच अध्यायों में हिरण्यकश्यप की जो चाल है, जो व्यवहार है, जो भाव है, उससे पता चलता है कि वह कितना वासनाओं से अभिभूत था। और आगे के पांच अध्यायों में प्रह्लाद जी की वासना का ज्ञान होता है कि कितना कितना उनको संकट का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने सही सिद्धांत को नहीं छोड़ा और उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं अपने साथियों को भी कल्याण की बात बताई। ये संतों का, भक्तों का एक विलक्षण स्वभाव होता है, उनकी एक विलक्षण वासना होती है। और तीसरे ये पांच अध्यायों का प्रकरण है, ये सामान्य वासनाओं का प्रकरण है। संसार में चार वर्ण हैं और चार ही आश्रम हैं। इन चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में रहने वाला किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है, इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज परम भागवत नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज मैं सनातन धर्म का स्वरूप पूछना चाहता हूं, वर्णाश्रम का क्या औचित्य है ये हमको समझाइए, आप स्वयंभू ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हैं इसलिए आपके ज्ञान में किसी प्रकार से कमी नहीं है, आप जैसे महापुरुष हमारे जैसे जीवों पर दया करने वाले भी हैं, न तथा अपरे, ऐसी बात दूसरे कोई बता भी नहीं सकते हैं, बताइए सनातन धर्म क्या है। नारद जी कहने लगे कि देखो युधिष्ठिर, तुमने सनातन धर्म के विषय में पूछा है तो इस धर्म के विषय में जो मैंने भगवान नारायण से सुना है, मैं उन भगवान नारायण को प्रणाम करके आप लोगों को सुनाता हूं। भगवान नारायण बद्री का आश्रम में लोगों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने ही धर्म के मूल में अपने को स्थापित कर रखा है, अर्थात सनातन धर्म की जड़ भगवान है। ये धर्म भगवान से ही पैदा होता है और भगवान से ही शक्ति को प्राप्त हुआ है। देखो सत्य दया तप तितिक्षा पवित्रता कर्तव्य अकर्तव्य का निरीक्षण इंद्रियों का दमन मन का संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय शरीर और मन से सरलता संतोष समदृष्टि सेवा और विषयों से उपराम होना और विषयों के अंदर दुख को देखना मौन रखना आत्मचिंतन करना अन्न आदि वस्तु का सबको सबके प्रति विभाग करके फिर उसे ग्रहण करना प्रत्येक प्राणियों का आदर करना उनमें अपना स्वरूप देखना ये सामान्यतया सभी मनुष्यों में धर्म होने चाहिए। 63 लक्षणवान राजन ये 30 लक्षणों वाला धर्म है। ये इस धर्म का जो पालन करता है माने ये गुण जिनमें होते हैं सर्वात्मा ये न तुष्यति सर्वात्मा प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब ये तो सब में ही होने चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो अथवा वह ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी हो कोई भी हो इनमें ये बातें होनी ही चाहिए। जिनका संस्कार होता है द्विजाति संस्कार होता है वे द्विज कहलाते हैं। संस्कारा यदवत छिन्ना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिनको एक संस्कारों की पद्धति के अंदर रहना है उनको भगवान ने द्विज नाम से पुकारा है। और इनका विशेष कर्म यज्ञ करना अध्ययन करना और दान देना है। इनमें ब्राह्मण है वो यज्ञ करता भी है यज्ञ कराता भी है अध्ययन करता भी है अध्ययन कराता भी है दान देता भी है और दान लेता भी है। ये 6 ब्राह्मण के काम हैं। परंतु राजा या क्षत्रिय अध्ययन करे और अध्ययन करावे यज्ञ करे और यज्ञ करावे और दान देवे ये 5 ही उसका काम है। दान लेने का काम क्षत्रिय का नहीं है। प्रजा गोप्तु वह प्रजा का शासन करे प्रजा से वह कर लेवे लेकिन ब्राह्मण से कर न लेवे उस प्रजा के कर से अपना निर्वाह करे ये राजा का काम है। वैश्य का काम वार्ता वृत्ति है वस्तुओं का आदान प्रदान करके जनता तक पहुंचाना और उससे जैसे जितने से हमारा निर्वाह हो सके उतने से अपना निर्वाह करना और ब्राह्मण कुल का अनुयायी होकर रहना ये वैश्य का काम है। और शूद्र का काम ब्राह्मणों की सेवा करना द्विजाति की सेवा करना और उनसे जो अपने को मिल जाए उससे अपना निर्वाह करना ये शूद्र का काम है। इसमें भी जहां तक निर्वाह का प्रश्न है ब्राह्मण का निर्वाह बड़ा कठिन है। ब्राह्मण को इन 4 प्रकार की वृत्तियों से निर्वाह करना चाहिए या तो वार्ता वृत्ति है माने कर्मकांड है या शालीन वृत्ति है बिना याचना किए स्वतः स्वाभाविक जो कुछ आ जाए आकाश वृत्ति से उससे अपना निर्वाह करना है या यायावर वृत्ति से माने भिक्षा के द्वारा निर्वाह करना है अथवा शीलोंचन वृत्ति से अपना निर्वाह करना है। खेत काट लिया खेत का धान मालिक अपने घर में ले गया उसके बाद जो दाने पड़े हैं उन दानों को बीन बीन करके अथवा अनाज मंडी में जब मंडी बंद हो जाए उसके बाद वहां जो बिखरा हुआ धान है उसको इकट्ठा करके उससे अपना निर्वाह करें। ब्राह्मण का इस प्रकार से निर्वाह करने में ही कल्याण है। और चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य कोई क्यों न हो इनको अपनी वृत्ति पर विचार करना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी कितना भी कष्ट आ जाए हाँ ब्राह्मण कभी क्षत्रिय की वृत्ति का आचरण कर सकता है क्षत्रिय कभी वैश्य की वृत्ति का आश्रय ले सकता है वैश्य कभी शूद्र की वृत्ति का आश्रय ले सकता है परंतु वो अदुष्ट वृत्ति होनी चाहिए। परंतु स्वयवृत्ति नीच सेवनम नीच व्यक्तियों की सेवा करना ये ब्राह्मण का काम नहीं है। कितनी आपत्ति आ जाए नीच जनों की सेवा उसे नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वो है हाँ ब्राह्मण के अंदर स्वाभाविक रूप से सम दम तितिक्षा तपस्या शांति सरलता रहती है और अच्युत आत्मत्वम और वो अपने आप में भगवान की सत्ता स्वीकार करता है ज्ञान उसमें रहता है सत्य भाषण करता है ये ब्राह्मण का स्वाभाविक लक्षण है। क्षत्रिय में स्वाभाविक ही शौर्य रहता है, पराक्रम रहता है, तेज है, त्याग है, आत्मजय है, अपने आप पर वो विजयी होता है, दूसरों पर क्षमा करता है, ब्राह्मणों के प्रति नम्र रहता है और सबकी रक्षा करने वाला होता है। वैश्य है वो देवताओं में, गुरुजनों में और भगवान में भक्ति रखने वाला होता है, धर्म अर्थ काम का सेवन करने वाला होता है, भगवान में आस्था होती है, अपने कार्य के प्रति उद्यमशील होता है, बड़ी निपुणता के साथ कार्य करता है, ये वैश्य का लक्षण है। और शूद्र स्वाभाविक ही विनम्र होता है। शूद्रस्य सन्निति शौचम, शूद्र में पवित्रता होती है और शूद्र अपने जिस मालिक की सेवा में लगता है बिना किसी कपट से वह उसकी सेवा करता है, बिना मंत्रों से वो यज्ञ करता है, चोरी नहीं करता है, सत्य बोलता है, गाय की और ब्राह्मण की रक्षा की जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वो अपने प्राण का भी त्याग कर देता है, इतना शूद्र में साहस होता है। अब इनकी स्त्रियां होती हैं, उनकी भी बात बताते हैं कि स्त्री मात्र को अपने पति है, अपने अपने पति को साक्षात देवता माने, भगवान माने, भगवान के समान इनकी सेवा शुश्रूषा करें, और पति के जितने भाई बंधु हैं तद बंधुसु अनुवृत्ति ही, उन सब के साथ वैसा ही सेवा का भाव रखे, सबका आदर करें और अपने घर को स्वच्छ रखे, स्वयं अपने हाथ से घर का कामकाज करें, सम्मार्जन माने झाड़ू बुहारी निकाले या कहीं लेप करना हो तो लेप करें, घर के वस्त्रों को और पात्रों को साफ स्वच्छ रखे, स्वयं भी सुसज्जित रहे और हरदम प्रसन्न रहे। सती साध्वी स्त्री वही होती है राजन जो अपनी तरफ से कोई भी कामना अपने पति के सामने नहीं रखती है और अपने पति के सामने सत्य बोलती है, प्रिय बोलती है, और काले काले भजेत पतिम, और हर समय पति के हित का ध्यान रखा करती है। वह जैसा उसको खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, उसमें वो संतुष्ट रहे, कोई किसी प्रकार से लोभ न करे, प्रिय और सत्यवाणी बोले, अपने कार्य में कभी प्रमाद न करे, और यदि उनका पति महान नीच कामों को नहीं करता है तो पतिम तु अपतितम भजेत, ऐसा अपतित पति है उसका तो हरदम वो आदर करता रहे। जो स्त्री अपने पति के प्रति हरि भाव रखती है, भगवत भाव रखती है, उसे साक्षात श्री रिव लक्ष्मी के समान समझना चाहिए, और स्वयं भगवान ऐसी स्त्री को अपना दिव्य धाम देते हैं जहां लक्ष्मी का निवास रहता है। कई संकर जाति के भी प्राणी हैं, उन लोगों को अपने अपने कुल की जो परंपरा निर्वाह की चली आ रही है उसी से ही निर्वाह करना चाहिए, परंतु उन लोगों के लिए भी चोरी का विधान नहीं है, पाप का विधान नहीं है। कभी कभी कोई ऐसे ही समय आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत अपने अपनी वृत्तियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, परंतु वो परिवर्तन हर किसी को करने का अधिकार नहीं है। वेद दृग भी स्मृतो राजन, जो वेद के मर्म को जानने वाले हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, वे महापुरुष युग युग के अनुसार अपने अपने समय में किनको क्या करना चाहिए, प्राक्तन चली आ रही परंपरा में कुछ वे दयालुता पूर्वक कई परिवर्तन करा दें तो करा सकते हैं, परंतु फिर भी सबको अपने अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। वर्तमान स्वकर्म कृत, अपने कर्म में जो लगा रहता है वो स्वाभाविक ही संसार से ऊपर उठ जाता है। और जिस प्रकार बार बार खेत के अंदर बीज डाला जाता है तो वो खेत आगे जाकर बीज देना बंद कर देता है, इसी प्रकार से संसार की कामनाओं को न रख करके जो कर्म किया जाएगा तो उससे तो भाई बहुत ही लाभ की बात है, लेकिन कामानाम अति सेवया, बहुत ज्यादा कामना की पूर्ति में लगेंगे तो आगे जाकर वो कामना भी नष्ट हो जाएगी। परंतु वो कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ी थोड़ी कामना हो और उसको हम पूर्ति करने लगेंगे तो उससे जैसे कोई आग के अंदर बूंद बूंद घी डालता है तो उससे आग भड़कती है, लेकिन एक साथ यदि कोई घी डाल देता है, इसी प्रकार से कभी कभी किन्हीं के सामने बहुत भोग पदार्थ आते हैं तो वो भी उसमें अरुचि पैदा करने के लिए आते हैं। अतः युधिष्ठिर, जिनके सामने अनुकूलता आती है वे उससे ऊपर उठें, यही इस बात से समझें। और इस प्रकार से सभी वर्ण वाले अपना अपना काम करके अपने इस मानव जीवन में से अच्छे कर्म करके ऊपर उठ करके कल्याण को प्राप्त होवे, यही वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य है। अब नारद जी महाराज आश्रम व्यवस्था के विषय में बताते हैं। चारों वर्णों का कर्तव्य कर्म बताने के पश्चात नारद जी महाराज चारों आश्रमों का कर्तव्य कर्म बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में निवास करना चाहिए, अपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, उनके सामने दास होकर रहना चाहिए और गुरु सुदृढ़ सौहृदय अपने गुरुजनों में सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल गुरु की अग्नि की और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या में उसे मौन रहकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो कुछ वो विद्या का अध्ययन करे गुरु महाराज के बुलाने के बाद, तो बड़े नम्रता से गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद उसे सुनना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह की सामग्री बहुत सीमित रखनी चाहिए। प्राचीन धर्म प्राचीन समय के अनुसार उसको मेखला माने जनेऊ रखनी चाहिए और वस्त्र रखने चाहिए, मृगचर्म जैसे वस्त्र रखने चाहिए, मूंज के वस्त्र रखने चाहिए, जटा और दंड कमंडल धारण करना चाहिए। इस प्रकार से उसे अपना संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे उस समय में जितना आवश्यक हो उतने से ही स्त्रियों से बात करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आपस में भी स्त्री संबंधी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने केसों को संवारना और कानों में और जो तरह तरह के इत्र आदि पदार्थ लगाना तथा साथ ही साथ नेत्रों में काजल लगाना, ये गुरु की स्त्री हो तो भी उनके हाथ से नहीं लगवाना चाहिए। कार्य नात्मनो युवा, न उनसे अपने शरीर की मालिश करवानी चाहिए। बहुत सावधान करते हुए नारद जी कहते हैं कि देखो, जब तक मनुष्य को द्वैत का भास रहता है, एक अद्वितीय तत्व का अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक इसके मन की वृत्तियों की जगह जगह फिसलने की गुंजाइश रहती है। इसलिए स्त्री को अग्नि के समान समझे और मनुष्य है वो अपने मन को घी के घड़े के समान समझे। अग्नि के पास घी रखने पर घी पिघलता ही है, ऐसे ही सुताम अपि रहो जह्याद अन्यदा यावद अर्थकृत। न जाने हमारा मन कब किस समय में फिसल जाए, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब ब्रह्मचर्याश्रम की बात है। और गुरु महाराज जब आज्ञा दे दे तब वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। ये ब्रह्मचर्याश्रम ऐसा श्रेष्ठ है युधिष्ठिर कि गृहम वनम वा प्रविशेत, इस ब्रह्मचर्याश्रम से आगे गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं अथवा वानप्रस्थ में भी जा सकते हैं। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो वानप्रस्थ में जाते हैं और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं वो आगे गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो जो वानप्रस्थ में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए बताते हैं कि वे जंगलों में रहे और अग्नि से पका हुआ कोई फल हो अथवा अन्न हो वो न लेवे, केवल अर्क पक्वम उताहरे, स्वाभाविक ही सूर्य से पका हुआ कंदमूल फल आदि है उन्हें ही स्वीकार करें। जब पुराना अन्न उनका नष्ट हो जाए तो न पुराना अन्न नए अन्न आने के बाद में त्याग देने योग्य होता है। वानप्रस्थ को गुफाओं में रहना चाहिए, कब अग्नि की रक्षा के लिए, अन्यथा उसे सर्दी गर्मी सब सहन करना चाहिए। परंतु हमारी बुद्धि खराब न हो जाए, शरीर को इतना ज्यादा कष्ट भी नहीं देना चाहिए जिससे वो पागल हो जाए, उसके बुद्धि में विकार पैदा हो जाए, इतना कष्ट भी नहीं देना चाहिए। सच बात तो यह है राजन कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या के विषय में सावधान रहना चाहिए। ये वानप्रस्थ भी एक अध्यात्म विद्या के लिए ही है और वानप्रस्थ का कोई अर्थ नहीं है। वहां वानप्रस्थ में रहता हुआ शरीर से अहमता और ममता का त्याग करे, जितनी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को अपने कारणों में लीन करता चला जाए, माने अपने शरीर में जो आकाश है वो महाआकाश से भिन्न नहीं है, हमारे शरीर में जो गर्मी है वो बाहर की गर्मी से सूर्य से अलग नहीं है, हमारे शरीर में जो वायु है वो बाहर की वायु से अलग नहीं है, हमारे शरीर में जो गीलापन है वो समष्टि जल से अलग नहीं है, इस प्रकार से हमारे शरीर में जो पार्थिव अंश है, जो गाढ़ापन है, जो हड्डियों का स्वरूप है, वो बाहर पृथ्वी से अलग नहीं है, ऐसे पृथ्वी का पृथ्वी में और जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, आकाश को आकाश में देखे, समष्टि पंच महाभूतों में अपने समष्टि अपने व्यष्टि शरीर को देखे और इंद्रियों को भी तत् तक देवताओं में लीन कर देवे और अंत में अपने आप को ही परमात्मा में समझे, इस प्रकार से सबसे असंग होकर के रहे। अब वानप्रस्थ जब पूरा हो जाए तो फिर संन्यास में रहे। नारद संन्यास की विधि बड़ी विचित्र है, संन्यास के अंदर केवल लज्जा निवारण का ही कपड़ा रहना चाहिए और सब कुछ बाहर के सब चिन्ह हटा देने चाहिए। संन्यास में यज्ञोपवीत का भी त्याग हो जाता है, शिखा का भी त्याग हो जाता है, दंड कमंडल सब का त्याग कर देते हैं, नारायण पर केवल एक नारायण परायण होवे। इस सारे संसार में कार्य कारणात्मक जगत में एक परब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसी उसकी संदेह रहित दृष्टि होनी चाहिए। जागृत और स्वप्न की संधि में परमात्मा है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया हम करते हैं तो उसके बीच में परमात्मा है, हम वाणी में कई शब्दों को बोलते हैं तो एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलते हैं उसके बीच में परमात्मा है, इस प्रकार से परमात्मा को सब जगह देखे, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस बात को हरदम समझता रहे। संसार में जो कुछ इंद्रियों से प्रतीत हो रहा है वो माया मात्र है, वास्तविक नहीं है, इस बात के ऊपर दृढ़ बना रहे, न तो कभी मृत्यु का आह्वान करे और न कोई जीवन की इच्छा रहे, ये शास्त्रों का अभ्यास भी फिर छोड़ देवे, अपने आजीविका के विषय में बिल्कुल चिंता न करे, किसी प्रकार से लोगों से वाद विवाद न करे, किसी भी एक पक्ष के खंडन मंडन में न लगे, न चेला चेली बनावे, न ग्रंथों का कोई अभ्यास करे, न कोई उनकी व्याख्या करे, न किसी प्रकार का कोई और नई प्रवृत्तियों में फंसे, न किसी आश्रम की प्रवृत्ति में फंसे, शांतस्य समचित्तस्य, शांत और समचित्त होकर अपने स्वरूप में स्थित रहे। हम तुमको एक बहुत अच्छा इतिहास सुनाते हैं। एक बार प्रह्लाद जी महाराज नर्मदा नदी के किनारे अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे, वहां पर एक दिव्य पुरुष को देखा, खूब लंबा चौड़ा वो पुरुष है, बड़ी दिव्य उसकी आकृति है, शरीर के ऊपर मिट्टी छाई हुई है और उनके शरीर के ऊपर थोड़ा मैल भी जमा हुआ है, लेकिन फिर भी चेहरे से कांति निकल रही है, शरीर भी देदीप्यमान है। प्रह्लाद जी महाराज उनके आकृति से, उनकी वाणी से, उनके चलने के ढंग से, उनके बैठने के ढंग से ऐसा विचार किए, ये सामान्य पुरुष नहीं होने चाहिए। देखो संत महापुरुष होते हैं, उनके नयन, उनके बैन और उनका चाल ढाल स्वतः ही बता देता है कि इनमें कुछ न कुछ विशेषता है। प्रह्लाद जी महाराज उनके पास में गए और जाकर के प्रह्लाद जी ने उनके चरणों का स्पर्श करते हुए कहा कि हे महात्मन, आप बहुत अच्छा शरीर धारण किए हुए मोटे ताजे आप हैं, भोगियों की तरह से तो आप हैं नहीं, लेकिन आप बड़े निश्चिंत हैं, फिर भी खाने पीने के लिए कोई सामग्री नहीं, फिर भी आपका शरीर बड़ा बड़ा हृष्टपुष्ट है, किसी प्रकार से आपके मन में चिंता नहीं दिख रही है, क्या बात है, सारा संसार तो चिंता की अग्नि में जल रहा है और आप बहुत मस्त दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। दैत्यराज प्रह्लाद जी के द्वारा जब ये प्रश्न किया गया तब मुस्कुराते हुए वे दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे असुर श्रेष्ठ, और कोई आदमी मुझसे प्रश्न करता तो मैं शायद उसको उत्तर देता नहीं देता, लेकिन तुम साक्षात भगवान के भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर कहूंगा। देखो प्रह्लाद, जो व्यक्ति इस संसार में दिखाई देने वाले पदार्थों से और सुनाई देने वाले लोकों से माने स्वर्ग लोक आदि ऊंचे लोक हैं, इनसे वैराग्य को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। बड़ी भारी कोई भगवान की कृपा होती है, न जाने कितने जन्मों का कितना ही बड़ा भारी कोई पुण्य उदित होता है तो ऐसे व्यक्ति को संसार से वैराग्य होता है। तुमने तो भगवान की भक्ति की है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार से कोई अंधकार नहीं है। हाँ, मैं अपने दिल की बात तुमको जरूर बता देता हूं। देखो प्रहलाद, इस संसार में खास चिंता का कारण क्या है? लोगों के पास बहुत सामग्रियां हैं, फिर भी उनको आनंद नहीं मिलता है, वे चाहते हैं वो चीज नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है कि ये जो भोगों के प्रति तृष्णा हो रही है, इस तृष्णा के द्वारा सच पूछा जाए तो प्रहलाद अपूर्या, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। इन पूरी न होने वाली तृष्णा के पीछे लोग संसार में फिसल फिसल करके पड़ रहे हैं। मैं भी भाई ऐसा ही था, नाना प्रकार की योनियों में घूमता घूमता गया, तरह तरह से स्वर्ग में गया, पशु पक्षियों में गया, देवताओं में गया, बहुत अपने कर्मों के फल से इस तृष्णा से मैंने धोखा खाया है। देखो, घर गृहस्थ में चले जाओ, वे सुख के लिए लगे हैं, दुख उनको मिलता है, इन सब की दशाओं को देखकर अब मेरे मन में वैराग्य हो गया है। मैंने विचार किया है कि अरे, सुख बाहर से नहीं मिलेगा, सुख का खजाना तो मेरे पास है, यदि मैं अपने आप को टटोलूंगा तो मुझे बहुत बड़ा आनंद का खजाना मिलेगा। देखो, जैसे जल के ऊपर सेवार आ जाए, जल के ऊपर काई आ जाए, मैला जम जाए तो लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ जल है, लेकिन जब उसको काई को हटा दिया जाता है तब उसको वास्तविक जल मिलता है। ऐसे ही जो हमारा आनंद अंश है, आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप के ऊपर संसार की कामना रूपी मैल छा गया तो हमारा आनंद है उसमें छिप गया है, और मृग तृष्णा के समान बाहर बाहर ही ढूंढता है। और जब वो तृष्णा हटती है, कामना हटती है, तो उसके अंदर से स्वाभाविक ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए धनी आदमियों के पास जाके देख लो, जितना उन लोगों को दुख है उतना कहीं दुख नहीं है। देखो प्रहलाद, एक तो उनके मन में धन का लोभ बैठ गया, एक उनके पास धन है तो सब लोगों के ऊपर वे शंका करते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, तरह तरह से उपाय करते करते भी उनको पूरी तरह से नींद नहीं आती है। राजा से भय है, चोर से भय है, शत्रु से भय है, और स्वजनात और अपने आत्मीय लोगों से भय है, बेटा बेटी से भी भय है। इसलिए नित्यम प्राणार्थ वद भयम, क्या बतावे, ऐसे लोगों को सबसे भय होता ही रहता है। मैंने विचार किया, हे भगवान, आप कृपा करो तो और कुछ करे सो करे, लेकिन हे भगवान, हमको कभी धनी मत बना देना, हमारे पास धन न हो जाए। इस कारण से हम लोग बड़े सुखी इसलिए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब जब धन नहीं है तो शोक भी नहीं है, धन नहीं है तो मोह भी नहीं है, धन नहीं है तो भय भी नहीं है, धन नहीं है तो राग भी नहीं, क्रोध भी नहीं, परिश्रम भी नहीं। इस प्रकार से हम बहुत आनंद के साथ रहते हैं। प्रहलाद, तुम नहीं जानते कि ये मधुमक्खियां कहां कहां से शहद इकट्ठा करती है, रस इकट्ठा करती है, और एक छत्ते के अंदर लाला करके उस रस को रखती है, मन में सोचती है कि अब इनके मिठास को हम खाएंगे, हम शहद को हम पिएंगे, लेकिन जो ही वो शहद का छत्ता पक्का होता है, मधुमक्खियों को भगा दिया कि किसके लिए धन संग्रह करें, हमारा जीवन हमारे भाग्य से चलेगा, दूसरे के जीवन दूसरों के भाग्य से चलेंगे, हम क्यों अर्थ संग्रह के अंदर हमारी वृत्ति को खराब करें। तो यदृच्छया, तब से हम स्वतंत्रता से घूमते हैं, कोई हमारे पास हम वस्तु नहीं रखते। अब विचार किया कि कोई वस्तु नहीं होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा, इतने में ही हमने जंगल में एक विशाल काय सर्प को देखा, लंबा चौड़ा उसका शरीर है और वो चल हिल भी नहीं सकता है, वो भी कई वर्षों से जी रहा है। मन में विचार आया कि जब ये सर्प भी अपना निर्वाह कर सकता है तो फिर भगवान हमारा निर्वाह क्यों नहीं करेंगे। तब मैं सर्प को देख करके अपने भाग्य के ऊपर निश्चिंत हो गया। अब मुझे जैसा भी सूखा टूका मिल जाता है, कभी माल मत्ता भी मिल जाता है, खा लेता हूँ और अपने मस्ती में मस्त रहता हूँ। कभी दिन में मिल जाता है, कभी रात में मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। दिवा नक्तम यदृच्छया, जैसी भगवान की इच्छा जैसा होता है वैसा ही मैं पा लेता हूं। कोई आता है मुझे रेशमी वस्त्र दे देता है तो वो पहन लेता हूं, कोई आता है ओढ़े हुए रेशमी वस्त्र को उठा के ले जाता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं, और कोई मुझे पहना हुआ वस्त्र दे देता है तो उसको भी पहन लेता हूं। तो मैं देखो कायदे की बात तो यह है कि प्रारब्ध के ऊपर संतुष्ट हूं, जैसा मिलता है मेरे भाग्य से ही मिलता है, उसके उसमें मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। कभी कभी मैं राज महलों में ले जाया जाता हूं, वहां अच्छे अच्छे सोने के पलंग है, वहां मुझे बहुत ही पयपहीन निभा शैया, वहां दूध के झाग जैसे सफेद सफेद बड़े अच्छे अच्छे गदरे लगे हुए हैं, उनके ऊपर सुलाया जाता है तो आराम से सो जाता हूं। और कभी वहां से निकाल दिया जाता है और कहीं सूखे घास के पत्ते पर लेटना पड़ता है तो वहां भी बड़े आनंद से सो जाता हूं। तो इस प्रकार से कोई नहला दे देते हैं तो नहा लेता हूं, कोई चंदन लगा देते हैं तो लगवा लेता हूं, माला पहना देते हैं तो पहन लेता हूं, रथ पर बैठा देते हैं, हाथियों पर बैठा देते हैं तो बैठ जाता हूं। और कभी कभी दिग्वासा, कभी कभी हमारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, हम दिगंबर रहते हैं तो वैसे भी हम रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में न मैं अनुकूलता को लेकर प्रसन्न होता हूं और न मैं प्रतिकूलता को लेकर कभी दुखी होता हूं, न कोई मेरे अनुकूल चलने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं और न ही कोई मेरे प्रतिकूल चलने वाले की निंदा करता हूं, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, शरीर अपने से अलग, मैं अपने आप में स्थित, अतः मैंने विकल्प को समाप्त कर लिया है। प्रहलाद, ये जो तरह तरह की भ्रांतियां ये चित्त में पैदा होती हैं, मैंने चित्त को तो मन में लीन कर दिया, मन को बुद्धि में लीन कर दिया और बुद्धि को माया में लीन कर दिया और माया को अपने स्वरूप में लीन कर दिया, अब बताओ कहां मुझे आवश्यकता होगी। जो भी आवश्यकता होगी, जो भी कामना होगी, वो शरीर को लेकर के होगी। जब शरीर मैं हूं ही नहीं तो फिर आवश्यकता भी मेरी है ही नहीं, बड़े आनंद के साथ रहता हूं। प्रहलाद, ये मेरा बड़ा गुप्त चरित्र है, मैं हर किसी को कहता नहीं हूं, तुम भगवान के भक्त हो अतएव मैंने तुम्हारे सामने इतनी बात कह दी है, अन्यथा मैं लोगों से ज्यादा मुंह खोलना भी पसंद नहीं करता हूं। प्रहलाद जी महाराज ऐसी मस्ती देख करके, ऐसा ज्ञान सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनकी पूजा की और वे अपने महल में आ गए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि महाराज, आपने ब्रह्मचारियों की, वानप्रस्थियों की, सन्यासियों की बात बताई, महाराज मैं तो एक गृहस्थी आदमी हूं, एक गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए वो आप हमें समझाइए। ध्यान से सुने हो, नारद जी कहते हैं कि गृहस्थी का सबसे पहला काम है कि वह अपने गृहस्थ में जो जो कार्य करे वो कार्य करने से पहले ही भगवान से कह दे कि हे भगवान, ये कार्य मैं आपके अर्पण करने के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्त कर देवे तो इस कार्य से मुझे ये फल मिले ये आशा नहीं है, ये केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। वासुदेवार्पणम, साक्षात भगवान वासुदेव को अपनी सारी क्रियाएं अर्पित कर देनी चाहिए और उसे सत्संग करते रहना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, संतों के महात्माओं के बीच में बैठकर भगवत तत्व के विषय में जानना चाहिए। जो संसार हमारा त्याग कर रहा है उस संसार का हमें त्याग कर देना चाहिए, त्याग माने उसमें मोह नहीं करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए। जितने से हमारा काम चल सके उतनी वस्तु हमारे पास में रहनी चाहिए, चाहे लोगों के पास कितनी वस्तुएं हो, दूसरों की होड़ से नहीं चलना चाहिए, मनुष्य को अपने विचार से चलना चाहिए। भाई बंधु परिवार वाले जैसी हमसे इच्छा रखते हो, बिना किसी ममता के उनकी इच्छा को पूरे करते रहना चाहिए, जो कुछ हमें मिल जाए उसमें बहुत संतोष रखना चाहिए। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मर्रति। जितने से हमारा निर्वाह हो अपनी उतनी ही वस्तु माननी चाहिए, ज्यादा वस्तुओं पर जो अधिकार जमाता है हे युधिष्ठिर वो चोर है और वो डंडे का पात्र होता है। अपने घर के अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, उनको भी अपने घर का सदस्य मानना चाहिए, उनको भी अपनी तरफ से यथाशक्ति खाने पीने के लिए देना चाहिए। घर गृहस्थी व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के अंदर ज्यादा कष्ट नहीं उठाना चाहिए। यथा देशम यथा कालम और यावत दैवोपपादितम,
जैसा देश हो उसके अनुसार काम कर दिया, जैसा समय हो वैसा काम कर दिया। लोक दिखावे में तरह तरह का दान करते हैं, लोक दिखावे में फिर दान देने के बाद दान तो देना पड़ेगा, फिर कष्ट उठाते हैं कि ऐसे दान की महिमा नहीं है। ऐसे लोक दिखावे में कोई बड़ा काम करे उसकी महिमा नहीं है। जितनी शक्ति हो, जैसा समय हो, जैसा देश हो और जैसे भाग्य में मिलता हो उसके अनुसार यथाशक्ति काम करना चाहिए, ज्यादा कष्ट नहीं उठाना चाहिए। और अपने स्त्री पुत्र बाल बच्चे आदि जो हैं उनको अतिथि की सेवा में लगावे। स्त्री को भी चाहिए कि वे लगावे सेवा में, लेकिन निर्दुष्ट सेवा में लगावे। स्त्री अतिथि की सेवा करे, भोजन बना दे, सब प्रकार की सामग्री उनके पास में रख दे। ऐसा करने से हे राजन, मनुष्य का अपनी स्त्री से प्रेम हटता है और सबसे बड़ा विजयी संसार में वही है, स्त्री होकर पुरुष में आसक्त न हो और पुरुष होकर स्त्री में आसक्त न हो। तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जिह्याद यस्तेन यजितो जितः। जो स्त्री के सामने पराजित है वो सबके सामने पराजित है, और जो इसको जीत चुका है वो सबको जीत चुका है। अरे भाई, यहाँ पराजय की बात क्यों होती है कि अपने गंदे शरीर को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, अतः ये आकर्षण पैदा होता है। गृहस्थ आश्रम में इस आकर्षण को मिटाने का बहुत अच्छा उपाय है। समय समय पर देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का, प्राणियों का, पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष आवे तो बड़ी श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा भी जो अपने पितरों के दिन आते हैं उन दिनों में भी दान पुण्य करना चाहिए। चंद्रादित्योपरागे च, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, द्वादशी तिथि हो, व्यतिपात हो, और जब संक्रांतियां हो और अक्षय तृतीया हो, अक्षय नवमी हो, माने वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी अक्षय नवमी, इस प्रकार से इन अक्षय तृतीया में, अक्षय नवमी में दान पुण्य करना चाहिए। और गृहस्थी को ये चाहिए कि भाई पुण्य देशों में वो जावे, तीर्थों में जावे। तीर्थों में भी जाकर वे पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मण कुल का भी सेवन करें। पवित्र जो गंगा आदि तीर्थ है, पुष्कर आदि सरोवर है, कुरुक्षेत्र आदि स्थान है, वहां जावे। वाराणसी है, मथुरा है, पंपा सरोवर है, बिंदु सरोवर है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जावे और वहां पर कुछ दिन रहे, भगवान की लीलाओं को वे सुने और भगवान की पूजा करें, संतों का, महात्माओं का संग करें। देखो, वहां जावे तो उचित पात्रों को देख करके दान देना चाहिए। परंतु भाई, सबसे बड़े दान की बात बताते हैं, ध्यान देवें, दान के लिए सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? भागवतकार कहते हैं कि जीवरा शिविर आकीर्ण आंड कोशांग रिपो महान तन मूलत्वाद अच्युतेज्या सर्व जीवात्म तर्पणम। सबसे बड़े दान लेने वाले भगवान हैं। अपने जितनी वस्तुएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान के अर्पित कर देने चाहिए कि महाराज, आपसे बड़ा कोई दान लेने वाला नहीं, हम तो सब आपको देते हैं। क्योंकि देखो, ये संसार रूपी वृक्ष है, इसमें जीव है, ये छोटे छोटे जैसे जैसे गूलर के वृक्ष में फल लगते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ऐसे हम लोग एक ब्रह्मांड रूपी गूलर वृक्ष में, गूलर वृक्ष के फल में रहने वाले जीव है, और इस वृक्ष के मूल में परमात्मा है। उस परमात्मा की पूजा करना, उस परमात्मा के लिए समर्पित कर देना, उस परमात्मा के लिए यज्ञ आदि करना, सब जीवों को सुख शांति देने वाली बात होगी। देखो, पुरुष क्यों कहलाते हैं? कि सब जीवों में वो रहते हैं, इसलिए वो पुरुष कहलाते हैं। इसलिए हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखो, पहले सतयुग में इनमें पूजा कम होती थी, लेकिन जब त्रेता युग आया तो थोड़ा थोड़ा पाप बढ़ने लगा। तब विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने भगवान का रूप एक मनुष्य की आकृति के समान बना करके और सबको समझाया कि भाई, तुम मंदिर में जिस आकृति की पूजा करते हो, मंदिर में जाकर जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसके प्रति इतना नम्र भाव रखते हो, वे ही परमात्मा साक्षात सजीव होकर के यहाँ मनुष्य रूप में, स्त्री रूप में, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करो। इसलिए ये मूर्ति की पूजा चालू ही है। उपासते उपासतापि नार्थदा पुरुषद्विषाम, इस प्रकार से ये उनकी उपासना चालू हुई है, पुरुषों की उपासना चालू हुई है। माने सब पुरुष हैं, ये परमात्मा के स्वरूप हैं। इनमें भी ब्राह्मण सत्पात्र है, ब्राह्मणों में भी तपस्या से युक्त हो और विद्या से युक्त हो और संतों से युक्त हो तो फिर कहना ही क्या है। इस प्रकार से ऐसे पवित्र ब्राह्मणों से ये संसार है, ये पवित्र हुआ हुआ है। देखो नारद जी कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, अब मैं श्राद्ध के विषय में आपको विशेष बात बताता हूँ, ध्यान से सुने। वो श्राद्ध प्राय सज्जन व्यक्ति करते हैं, पितरों के अंदर प्रेम रखने वाले लोग करते हैं, लेकिन श्राद्ध को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। भागवतकार और ही बात कह रहे हैं कि दो प्रकार के ब्राह्मण है, एक तो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, कोई स्वाध्याय में रहने वाले हैं, कोई ज्ञान योग में रहने वाले हैं। तो श्राद्ध के विषय में हम बतावें कि श्राद्ध का जो कार्य है वो पितृ कार्य है, उसमें दो ब्राह्मण हो, ज्यादा से ज्यादा तीन हो, नहीं तो एक ब्राह्मण से भी काम चलता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भोजयेत सुसमृद्धो भी, जिस व्यक्ति के पास भगवान ने बहुत धन दे रखा है तो भी उस व्यक्ति को श्राद्ध के अंदर लंबा चौड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए। श्राद्धे कुरियात न विस्तरम, क्यों नहीं करना चाहिए कि श्राद्ध के अंदर जरा सा भी कुछ अंग वैगुण्य रह जाए, कमी रह जाए बड़े विधान करने में, तो उसका कष्ट पितरों को होता है। और जितनी संक्षिप्त विधि होती है, जितना कम बवंडर होता है और जितना कम काम करना पड़ता है, वो बहुत अच्छा काम होता है। इसलिए देश काल के उचित जो द्रव्य है उन द्रव्यों को लावे, और नैतानी विस्तरात, और ज्यादा उनका विस्तार न करे, संक्षिप्त सामग्री और अच्छे अच्छे ब्राह्मण, उनको एक या दो को ब्राह्मण को बुलावे। कहते हैं कि वहां भी क्या हो कि पहले ब्राह्मण के पास जावे और दो दिन पहले, एक दिन पहले जाकर निवेदन करे कि महाराज कल हमारे यहाँ श्राद्ध है। ब्राह्मण की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए और कार्यों में, लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए कि ब्राह्मण का आचरण कैसा है, ब्राह्मण का व्यवहार कैसा है, ब्राह्मण की वृत्ति कैसी है। इस प्रकार से अपनी दृष्टि से अच्छे ब्राह्मण को देखना चाहिए, खोज करनी चाहिए, और फिर उस ब्राह्मण को जाकर निमंत्रण देना चाहिए कि महाराज कल हमारे अमुक अमुक का श्राद्ध है, पिताजी का श्राद्ध है अथवा दादाजी का श्राद्ध है, उनका नाम बता दे, गोत्र बता दे, सब बता दे, और फिर घर पर आकर के और बड़े सादगी के साथ विधि पूर्वक वो श्राद्ध का अन्न बनावे। अब ब्राह्मण जब भोजन कर देवे, उसके बाद ब्राह्मण के करने के बाद फिर वह वहां परिवार वाले भोजन करें। उस समय में बहु बेटियों को भी नहीं बुलाना चाहिए, और यहाँ तक कहा है कि यदि कोई अन्न ज्यादा हो गया तो उस अन्न को खाड़ा खोद करके पृथ्वी के अंदर गाड़ देना चाहिए, किसी को भी वो अन्न नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण का क्या काम है कि ब्राह्मण का ये काम है कि भाई कल अमुक जगह जाना है तो पहले वो पितरों के आह्वनीय मंत्रों का उच्चारण करेगा, माने भाई अमुक अमुक पितर है वो मेरे अंदर आवे, और फिर उनके निमित्त में वो वहां गायत्री का जाप करेगा। वे जाप उस बिचारे पितर को मिलते हैं, चटाई पर सोएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, निर्वाह मात्र की सामग्री रखेगा, और फिर जब वो घर से रवाना होगा तो फिर पितरों का आह्वान करेगा, आवनीय मंत्रों से पितरों को कहेगा कि आप आइए और आप मेरे अंदर आरूढ़ होकर के, मेरे अंदर विराजमान होकर के वहां चलिए, और आप अपने ही वंशजों के वहां जाकर के आप उनके कल्याण के लिए वो अन्न स्वीकार कीजिए। फिर वो वहां जाते हैं, माने वो ब्राह्मण देवता जाता है, साथ में पितर भी आवनीय मंत्रों से आते हैं, और फिर वहां ब्राह्मण जाकर के और उन पितरों का फिर आह्वान करते हैं। ब्राह्मण भोजन करता है तो भोजन करते हुए वह सोचता है कि पितर भोजन कर रहे हैं, लोगों ने सोच लिया कि ब्राह्मणों ने भोजन करने के लिए बात लिख दी। नए नए शास्त्र के मर्म की जहां तक बात है, वहां ब्राह्मण का विचार कितना ऊंचा है कि इस भोजन से पितर तृप्त होंगे, तो पितरों की तृप्ति के लिए, दूसरों की तृप्ति के लिए बेचारा वो खाता है। और फिर वो अन्न खाने के बाद ब्राह्मण जाता है, फिर जाकर के और फिर प्रायश्चित करता है। एक दिन में दो तीन जगह नहीं खाते हैं ब्राह्मण, यदि कोई सही है, सही हिसाब से चलने वाले हैं तो फिर वे जाकर के और फिर प्रायश्चित करते हैं कि भाई आज हमने श्राद्ध का अन्न लिया है, तो वो प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने के बाद फिर दूसरे दिन जाना जाता है, तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर अलग से पितरों का आवनीय मंत्र करते हैं, आह्वान करते हैं। तो श्राद्ध का अन्न, श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा होती है, बहुत उनको तपस्या करनी पड़ती है। इस प्रकार से अन्नम सविविधन पश्चेत सर्वम तत्पुरुषात्मकम, तो श्राद्ध को पवित्र अंश ही पितरों से संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से संतुष्ट अहर है कुरियात नित्य नैमित्य की क्रिया। श्राद्ध की बात बता दी, सामान्यतया घर गृहस्थ में रहे तो बहुत संतोष धारण करना चाहिए, जैसा भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब बताते हैं कि पांच प्रकार का अधर्म होता है, एक विधर्म, एक परधर्म, एक आभास, एक उपमा और एक छल। ये पांच प्रकार के अधर्म होते हैं। सबसे पहले विधर्म बताते हैं कि धर्म के अंदर बाधा पड़ जाए वो विधर्म, दूसरे का जो धर्म है वो हमें पसंद तो आता है लेकिन वो कहलाता परधर्म है, जो जिसके लिए हमें आज्ञा नहीं मिली है वो हमारे लिए नहीं करना चाहिए, वो होता है परधर्म। पाखंड होता है वो होता है उपधर्म, और वेद के वाक्यों का छल पूर्वक अर्थ लगा ले वो होता है छल, और बाहर से तो धर्म दिखता है वास्तव में वो धर्म नहीं होता, वो कहलाता है आभास। इससे इन पांचों से बचना चाहिए। और गृहस्थी के लिए सबसे बढ़िया बात यह है, चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई हो, पर खास करके गृहस्थ का प्रकरण चल रहा है इसलिए बताते हैं कि गृहस्थी को कभी धर्म के लिए भी अर्थ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धर्मार्थम अपि नेहित है, निर्वाह के लिए भी अपने धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ये सोचे कि भाई धन होगा तो धर्म होगा, ये भी अपने मन से भावना निकाल देनी चाहिए। गरीब व्यक्ति है तो भी अपने मन को, अपने मन में धन को महत्व नहीं देना चाहिए। जैसे अभी प्रहलाद जी महाराज को कहा दत्तात्रेय जी ने कि अजगर है वो पड़ा रहता है, उसका भी जीवन निर्वाह होता है, तो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होगी वो अनिच्छा ही उसके सारे जीवन में सब काम बना देगी। वो अनिच्छा कोई कम चीज नहीं है। देखो हम लोग गरीबी से डरते हैं लेकिन अनिच्छा का महत्व नहीं समझते हैं। नारद जी कहते हैं कि अनिहा अनिहमानस्य महाहेरिव मुक्त वृत्तिदा, वो तो वृत्ति देने वाली है, निर्वाह करने वाली है, और यदि कोई हमारे कामना नहीं रहेगी तो उससे हमारा निर्वाह बहुत अच्छा होगा और हमारा कल्याण बड़े आसानी से हो जाएगा। इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। जिसके मन में संतोष है उसके लिए सब दिशाओं में आनंद ही आनंद है। अरे अपने पैरों में जूती पहन ली, अब जहां भी चलेगा कांटे से पत्थर से अपने आप बच जाएगा। तो असंतोष के कारण से ही सब बड़ा भारी अनर्थ होता है। क्या बतावे, बड़े बड़े सदसस्पति, सदसस्पति माने आचार्यों के भी आचार्य, यज्ञ में जो आचार्य होता है उससे भी बड़ा सबसे ऊंचा स्थान सदसस्पति का, उसके मन में भी यदि लेने की इच्छा है संतोष नहीं है तो पतन त्यद है, वे भी असंतोष के कारण से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बता रहे हैं कि काम को जीते तो संकल्प रहित हो जाए तो काम को जीत लोगे, काम को जीत लोगे तो क्रोध जीत लिया जाएगा, अर्थ की इच्छा नहीं होगी तो लोभ को जीत लोगे, तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो भय नहीं होगा, शोक और मोह ये ब्रह्म विद्या से दूर हो जाएंगे, और संत महापुरुषों की सेवा करोगे तो भीतर में दम्भ नहीं रहेगा। माने संतों का जीवन जैसे खुला है, संत कोई बात छिपाते नहीं है। दम्भ क्या है, अपने अवगुणों को छिपाना और जो गुण हमारे में है नहीं उनको प्रकट करके रखना। कहते हैं संतों की सेवा करोगे तो दम्भ वृत्ति समाप्त हो जाएगी, मौन रहोगे तो योग में कोई बाधा आती वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से रहे, जो हमको ज्ञान देने वाले संत महापुरुष है उन संत महापुरुषों को कभी सामान्य मनुष्य के न समान नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से वो रहे। और कहते हैं कि गृहस्थ के अंदर कोई रहा है तो उसको गृहस्थ का ठीक ढंग से पालन करना चाहिए।